ध्रुव और आहान उस वक्त एक ही कमरे में मौजूद थे। दोनों के चेहरे उदास थे। ध्रुव ने धीमी आवाज में आहान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या अरमान भाई ने वाकई आस्था भाभी के साथ कोई घटिया हरकत की होगी? आहान उदास होकर बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमने तो सोचा था कि धीरे धीरे भाई और भाभी में प्यार हो जाएगा और हम लोगों को हर रोज भाभी के हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, आहान ने कहा, लेकिन देखो अब सब कुछ बदल गया। आहान के मुंह बनाकर ये कहने पर ध्रुव ने उसके सिर पर एक चपेट लगा दी। तुझे इन सब सीरियस मैटर में खाने की पड़ी हुई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी अकल में भूसा भरा हुआ है या कुछ और? ध्रुव ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। आहान ने अपना सर सहलाते हुए कहा, लेकिन यार मैंने क्या किया? क्या तुझे नहीं लगता कि जब भाभी चली जाएगी हम दोनों सबसे ज्यादा भाभी का बना हुआ नाश्ता मिस करने वाले हैं ना? ध्रुव ने गुस्से में अपना हाथ बढ़ाकर आहान का गला चूट-मूट दबाते हुए कहा, ओ प्लीज भगवान के लिए चुप कर यार, एक बात बता, तुझे खाने के अलावा कभी कुछ नहीं सोचता है? आहान कुछ सोचते हुए बोला, सोचता है यार, तुझे पता है कॉलेज में टीना और मलिष्का कितने खूबसूरत लड़कियां हैं यार, मैं जब भी कॉलेज जाता हूं उन्हें देखता रहता हूं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता कि मुझे वो दोनों लड़कियां कितनी पसंद हैं। ध्रुव ने गुस्से से आहान की ओर झुंझलाते हुए देखा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कोई एक साथ दो लड़कियों को कैसे पसंद कर सकता है? आहान बेफिक्री से बोला, यार इसमें क्या गलत है, अब देख तुझे आलू के परांठे पसंद है राइट, लेकिन तुझे पनीर के परांठे भी पसंद है, उसी तरह से मुझे टीना और मलिष्का दोनों लड़कियां पसंद हैं, लेकिन यार मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं उन दोनों को प्रपोज कैसे करूं। आहान सोचने लगा मानो वो किसी बड़ी सोच में डूबा हो। ध्रुव ने अपना सर दीवार पर झूठ-मूठ पटकना शुरू कर दिया, ओ गॉड कौन सी घड़ी थी जब मैं तुझसे मिला था, तेरे साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। ये बोलकर ध्रुव झल्लाते हुए उस कमरे से बाहर निकल गया। आहान हैरान होकर सोचने लगा, यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना गुस्से में यहां से चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दो लड़कियों से प्यार करता हूं ये बात उसे बुरी लगी है, क्योंकि इसकी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं है। हाँ शायद यही बात हो सकती है, ये शायद इसी बात से जल रहा होगा। ये सोचते हुए ध्रुव अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में खो गया था जहां से उसे टीना और मलिष्का के कुछ अपडेट मिल सकें। ध्रुव अपने बंगले में जाना चाहता था, उसे आज काफी खालीपन सा लग रहा था। जब वो आकाश, सुमित, अरमान, आहान इन सब के साथ होता था तो अपने सब दुख दर्द भूल जाया करता था, लेकिन आज ध्रुव को आस्था के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो सोचने लगा कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि अरमान भाई आस्था भाभी को जाने से रोक लें और उन दोनों की जिंदगी कुछ अच्छी हो जाए, क्योंकि आस्था वाकई बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। ध्रुव अपने बंगले में आकर अपने कुछ बीते दिनों को याद करने लगा। दूसरी ओर टाइगर सुमित के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था। अरमान की हालत देखने के बाद टाइगर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अरमान के दुख दर्द और अपने गुस्से की आग को कहीं न कहीं निकालना चाहता था। वो सीधा एक गंदी सी बस्ती में पहुंचा था, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। टाइगर सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार सुमित भैया ने उसे यहां क्यों भेजा है। वो जगह देखकर टाइगर को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिस तरह से सुमित ने बिल्कुल सीरियस में उसे वो एड्रेस दिया था, उसे लगा कि वो यहां आ ही गया है तो उसे अच्छी तरह से जाकर चेक करना चाहिए। ये सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। टाइगर पूरी तरह से शॉक हो चुका था। वो अकेला ही बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी बंदूक के वहां आया था, सिर्फ अपना एक फेवरेट हथियार साथ में लेकर आया था। उसका फेवरेट हथियार कुछ और नहीं बल्कि स्क्रू ड्राइवर था। स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस, जो नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन वगैरह यूज करते हैं। पेचकस उसका फेवरेट हथियार था जिसका वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया करता था। चिल्लाने की आवाज सुनकर टाइगर जल्दी ही एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां पर कई छोटे छोटे मासूम बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। सबकी चीख गूंज रही थी, कुछ बच्चे के हाथ से खून निकल रहा था। भीख मंगवाने के लिए एक आदमी ने बच्चे के हाथ पैर काट दिए थे ताकि उस बच्चे के हाथ का खून देखकर लोग ज्यादा से ज्यादा भीख दें। इस तरह से वहां पर बच्चों से बहुत भीख मंगवाई जाती थी। वहां का दृश्य देखकर टाइगर का खून खौलने लगा था। वो तो अरमान को देखने के बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहता था। तब 10 से 12 आदमी टाइगर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? कहीं तू पुलिस का आदमी तो नहीं है? टाइगर का शरीर ये सब कुछ देखने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था मानो वो कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रोमन रेंस जो कि मेरा फेवरेट फाइटर है, टाइगर बिल्कुल उसी के जैसा है। मैंने उसी के जैसा उसे अंदाजा लगाया है, मुझे उम्मीद है आप लोग भी करेंगे। टाइगर ने उन सबको एक किलर सा लुक दिया और जल्दी ही अपना फेवरेट हथियार अपने हाथों में थाम लिया। उन लोगों को लगा कि टाइगर बंदूक वगैरह लेकर आया होगा, लेकिन टाइगर के हाथ में एक छोटा सा पेचकस देखकर वे सभी गुंडे एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगे। तो ये मामूली सा पेचकस लेकर यहां हम सबको डराने के लिए आया है?
एक गुंडा थोड़ा सा आगे बढ़ा और टाइगर पर हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने बीच रास्ते में ही उसके हाथों के बीच पेचकस घुमा दिया और अगले ही पल पेचकस उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। इतना भयानक मर्डर देखकर बाकी के सभी लोगों की हालत खराब हो गई। सबका गला सूखने लगा और जो आगे बढ़ रहे थे वे पीछे हटने लगे। एक आदमी हकलाते हुए बोला, कौन है तू और तुझे यहाँ का पता किसने दिया? याद रखना, तुम नहीं जानते कि हम किसके आदमी हैं। अगर हमारे मालिक को पता चला कि किसी ने उनके बिजनेस पर गंदी नजर डाली है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चले जाओ यहां से अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो। वो आदमी बुरी तरह से कांप रहा था। टाइगर के एक गाल पर खून के छींटे थे। वो उन्हें साफ करते हुए उस आदमी की ओर बढ़ा। टाइगर ने लगातार एक एक आदमी को पकड़कर बड़ी बुरी तरह से मारा। किसी की आंखों में पेचकस गाड़ रहा था तो किसी के गाल के बीच में बीच उसने पेचकस निकाल दिया। वो बड़ी ही बुरी और भयानक मौत देने लगा था। उस वक्त टाइगर का पूरा जिस्म खून से सना हुआ था। टाइगर के दांतों पर भी हल्का सा खून लगा हुआ था। टाइगर बड़े ही स्टाइल से मुस्कुराता हुआ बोला, आई लाइक इट, ये ड्रिंक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये कहकर टाइगर मुस्कुरा दिया। उसकी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दूर हुई। जल्दी ही सबको रिहा करवाने के बाद टाइगर एक बार फिर से फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। वो हरमान के पास उसे देखने के लिए चला गया था। टाइगर एक जीता जागता बम था, लेकिन उसका ट्रिगर सिर्फ अरमान के हाथों में था। अरमान का दूसरा दिन था। धीरे धीरे उसके जख्म भर रहे थे क्योंकि उसका हाई लेवल पर इलाज किया जा रहा था। टाइगर और सुमित एक पल के लिए भी अरमान के पास से नहीं हटे थे। सुमित टाइगर की आंखों में देखकर समझ चुका था कि टाइगर थोड़ा बहुत शांत हो गया है। तब उसने उन बच्चों के बारे में पूछा जो उस वक्त वहां मौजूद थे। टाइगर ने बेपरवाही से कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर खून पीने के लिए गया था, बच्चों को बचाने के लिए नहीं। फिर भी मैंने एक बच्चे को एक नंबर दे दिया था जो कि एनजीओ वालों का था। उस बच्चे ने अपनी पूरी डिटेल एनजीओ वालों को दे दी थी और जल्दी ही एनजीओ वाले वहां आ गए थे और बच्चों को ले गए थे।
ये बोलकर टाइगर एक बार फिर अरमान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। सुमित मन में सोचने लगा, इस आदमी की शक्ल इतनी मासूम और प्यारी है, लेकिन ये कितना खतरनाक है कोई नहीं जानता, और अरमान के लिए इसका पजेसिवनेस होना कहीं अरमान पर ही भारी ना पड़ जाए। सुमित को अरमान के लिए भविष्य में डर सताने लगा था, क्योंकि टाइगर अरमान के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर पजेसिव था। अरमान सिंघानिया धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी तबीयत शाम तक काफी हद तक बेहतर हो गई थी और उसे होश भी आ गया था। होश में आने पर उसने अपने सामने टाइगर और सुमित को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। टाइगर सर झुकाकर अरमान के पास खड़ा हो गया। अरमान ने टाइगर की ओर देखकर पूछा, उन बच्चों को बचा लिया तुमने? टाइगर ने बोला, किंग, बच्चे सेफ हैं और सबको सेफली उनके घर पहुंचा दिया गया है। सुमित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अभी तो थोड़ी देर पहले उसने बच्चों के बारे में पूछा था तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया था कि बच्चों को एनजीओ वालों के पास छोड़ दिया, लेकिन अब अरमान के पूछने पर वो बोल रहा है कि बच्चे सेफ हैं और उनके घर पर हैं। सुमित अपनी आंखें छोटी करके उसे गुस्से से घूरने लगा। सुमित हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ बच्चे इस तरह से किडनैप हैं? टाइगर तिरछा मुस्कुराया और सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित ब्रो, किंग ने मुझे तीन दिन पहले ही उन बच्चों को बचाने के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी तक उन बच्चों का पता एग्जैक्टली कहाँ है ये पता नहीं चला था, लेकिन उनका पता आपने लगा लिया, तो बस इतनी सी ही बात है। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सुमित मन ही मन में थोड़ा सहम सा गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अरमान की नज़रों से कुछ भी छुपा पाना किसी भी कीमत पर नामुमकिन है। सुमित ने बात बदलते हुए अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान, घर कब चलोगे? सुमित के ये पूछते ही अरमान केवल इंटेंसी नज़रों से सुमित की आंखों में देखता रहा और अगले ही पल बोला, क्या दादाजी का फ़ोन आया था? सुमित ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और नज़रें चुराते हुए बोला, नहीं, दादाजी का कोई फ़ोन नहीं आया। अरमान के दिल में टीस सी उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया। टाइगर अंदर ही अंदर चिर उठा कि दादाजी को आखिरकार क्या हो गया है और उन्होंने अभी तक किंग को फ़ोन क्यों नहीं किया, किंग को क्यों नहीं बुलाया? क्या दादाजी को ये नहीं पता कि किंग की ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है? लगता है मुझे अब दादाजी से मिलना होगा। टाइगर ये सब सोचने लगा। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि अरमान की शादी ऑलरेडी आस्था सिंघानिया से हो चुकी है, क्योंकि अरमान ने टाइगर को स्विट्जरलैंड पर एक मिशन पर भेजा था। वो मिशन कुछ और नहीं बल्कि वीर रायचंद का बिजनेस था जो स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। वीर ने वहां पर कुछ इल्लीगल काम भी शुरू किए हुए थे, इसलिए अरमान ने वीर रायचंद के इल्लीगल कामों को जड़ से मिटाने के लिए टाइगर को स्विट्जरलैंड भेजा हुआ था। इसलिए टाइगर 2 से 3 दिन पहले ही इंडिया लौट कर आया था। इस बीच अरमान की शादी हो गई थी, उसे इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। टाइगर ने सोचा कि उसे शायद अब दादाजी से मिलना होगा और उन्हें बोलना होगा कि वो किंग को फ़ोन करें। दूसरी ओर आज दूसरा दिन था। आस्था अपनी पैकिंग के साथ पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। दादाजी ने आस्था को जाने की परमिशन दे दी थी और साथ ही साथ उसे ये बता दिया था कि अरमान और आस्था के तलाक के पेपर वो रेडी करवा देंगे और वो सिग्नेचर करवाने के लिए खुद घर पर आएंगे, तो अब आस्था को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होते ही अगले हफ्ते आस्था अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर सकती थी, इसलिए इस वक्त आस्था बेहद खुश थी।
तो क्या रंग लाएगी टाइगर की पजेसिवनेस अरमान के लिए? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। लाइक शेयर दोस्तों।